यरमिया अध्याय 32। यरमिया अध्याय 32 पद 1। यहूदा के राजा सिदकया के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से ये वचन यरमिया के पास पहुंचा। सिदकया राजा के 11वें वर्ष में यरूशलेम का पतन हुआ था, अतः ये अंत का समय था। यरमिया अध्याय 32 पद 2 से लेकर 5 तक। उस समय 10वें वर्ष बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यरमिया भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकया ने ये कहकर उसे कैद किया था कि तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं ये नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, वो इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकया कसदियों के हाथ से ना बचेगा, परंतु वो बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और वो और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे और वो सिदकया को बाबुल में ले जाएगा और जब तक मैं उसकी सुधि ना लूं तब तक वो वही रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ बन ना पड़ेगा। यरमिया ने भविष्यवाणी की, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं ये नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, वो इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकया कसदियों के हाथ से ना बचेगा, परंतु वो बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और वो और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। और इस कारण सिदकया ने अप्रसन्न होकर उसे कैद कर लिया। ये भविष्यवाणी समय के क्रम में नहीं है, इसे समय के अनुसार अध्याय 34 में होना था। दोनों राजाओं का आमने सामने बातें करना आगे की बात है। अतः आप यहां देखते हैं कि यरमिया की भविष्यवाणियां समय के क्रम में नहीं है, ये उसकी भविष्यवाणियां हैं जो चली आ रही है। हम इसे अध्याय 34 के प्रथम भाग में देखेंगे। इस भविष्यवाणी के कारण वो बंदीगृह में डाला गया था, वो यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था। यरमिया अध्याय 32 पद 6 से लेकर 8 तक। यरमिया ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख शलम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास ये कहने को आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहले के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वो यहोवा का वचन था। हनमेल के खेत को छुड़ाने वाली बात में एक तर्क दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो ये है कि बिन्यामीन का क्षेत्र तो बाबुल के अधीन हो चुका था, अतः ये केत तो बाबुल के अधिकार क्षेत्र में था। वे 70 वर्ष तक बाबुल की बंदवाई में रहेंगे, अतः वो ऐसे खेत का भुगतान क्यों करे जो पहले ही बाबुल की भूमि हो चुके हैं। इस कारण जब परमेश्वर ने उससे कहा, उस खेत को खरीद, कल तेरा चचेरा भाई हनमेल आकर कहेगा कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेराई है। यही कारण था कि यिर्मयाह के मन में विचार आया कि ये परमेश्वर की वाणी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि ये विचार उसके अपने ही मस्तिष्क की उपज हो, परंतु जब हनमेल ने स्वयं आकर उससे कहा तब उसे समझ में आया कि वो यहोवा की ही वाणी थी, परंतु वो अब भी उलझन में ही था कि परमेश्वर उसे ऐसी आज्ञा क्यों दे रहा है। जो भी हो, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यिर्मयाह अध्याय 32 पद 9 और 10। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिए, और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर हो जाने पर गवाहों के सामने वो चांदी कांटे में तौल कर उसे दे दी। उसने पैसों को तराजू में तौल कर दिया। यिर्मयाह अध्याय 32 पद 11 से लेकर 14 तक। तब मैंने मोल लेने की दोनों दस्तावेजों जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे में आंगन में बैठे हुए थे, नेरिया के पुत्र बारू को जो मैसाया का पोता था सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारू की ये आज्ञा दी कि इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा यो कहता है, इन मोल लेने के दस्तावेजों को जिन पर मोहर की गई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहे। दूसरे शब्दों में उसे संभाल कर रख, क्योंकि मुझे उसका अधिकार लेने में बहुत समय बाकी है, अतः इन बातों को मोहर लगाकर सुरक्षित रख। यिर्मयाह अध्याय 32 पद 15। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। ये उसके विश्वास का प्रतीक था कि परमेश्वर उन्हें बंधुआई से निकालकर अवश्य लाएगा। यद्यपि आज वो बैरी के अधिकार में है, परमेश्वर उन्हें निश्चय ही लौटाकर लाएगा। वो देश फिर से उनका होगा और वे उस पर अधिकारी होंगे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यदि आपने कोई जमीन बेची है या आपसे जब्त कर ली गई है, तो कानूनी कागजात तैयार किए जाते हैं और उन पर मोहर लगाई जाती है। ये कागजात 6 वर्ष तक मान्य होते हैं। 7वें वर्ष में आप उस पर पुनः अधिकार कर सकते हैं, परंतु आपको उन कागजों में विहित शर्तें पूरी करना होगी। इस प्रकार उस भूमि को छुड़ाने के लिए आपको आगे आकर वो कागजात लाने होंगे, उसकी मोहर तोड़नी होगी, उसे खोलना होगा और ये सिद्ध करना होगा कि आपको उस भूमि के छुटकारे का अधिकार प्राप्त है। तदोपरांत आप जो शर्त उस दस्तावेज में है उसके अनुसार उसकी कीमत चुकाएंगे, या जैसे भी समझौता उन कागजातों में लिखा है वैसा करेंगे। अब वो फिर से आपकी जायदाद हो जाती है। इस प्रकार आप अपनी भूमि को सदा के लिए नहीं बेचते हैं, परंतु यदि आप उसे 7वें वर्ष में नहीं छुड़ाते तो आप उसे वंचित हो जाते हैं। भूमि की मुक्ति के इस नियम में एक संशोधन कर दिया गया था कि यदि आप सही समय पर उस भूमि को मुक्त कराने में सक्षम नहीं है, तो आपके कुटुंब का कोई एक सदस्य, आपका भाई, आपका चाचा या आपके चाचे का लड़का आकर उसे मुक्त कर सकता है, जिससे कि वो पारिवारिक संपदा बनी रहे। वो परिवारिक मुक्तिदाता कहलाता है। यहूदियों का ये रोचक नियम परमेश्वर ने बनाया था क्योंकि पृथ्वी मूल रूप से परमेश्वर की है, क्योंकि उसने उसकी सृष्टि की थी और उसने उसका अधिकार मनुष्य को दिया था और उससे कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। मैंने ये पृथ्वी तुझे दे दी है, मैंने तुझे इस पर समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, प्रत्येक चलने और रेंगने वाले जंतुओं पर प्रभुता दी है। परंतु जब आदम और हव्वा ने फल ना खाने की आज्ञा को तोड़कर फल खाया, उस पल से शैतान पृथ्वी का अधिकारी हो गया। अब पृथ्वी उसकी है, उसने पृथ्वी को शैतान के कब्जे में कर दिया। तब से आज तक पृथ्वी शैतान के अधीन है। आप जिस पृथ्वी को देखते हैं वो परमेश्वर द्वारा सिर्जी गई पृथ्वी नहीं है, ना ही आप परमेश्वर की इच्छा का संसार देखते हैं। जिस संसार को आप देखते हैं वो कष्टों से भरा संसार है। परमेश्वर तो कभी नहीं चाहता है कि किसी को कष्ट हो। आप पक्षपात से भरा एक संसार देखते हैं, परमेश्वर पक्षपात कभी नहीं चाहता है। इस संसार में धनी जन दरिद्रों को शोषण करते हैं, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप एक ऐसा संसार देखते हैं जहां बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं, परमेश्वर ने ऐसा कभी ना चाहा था। ये संसार रोगों से भरा हुआ है, परमेश्वर की ये इच्छा कभी नहीं थी। संसार में विपदाएं एवं कुकर्म आदि सब मनुष्य द्वारा परमेश्वर से विद्रोह का परिणाम है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता है। इसलिए संसार में भ्रष्टाचार है, उपद्रव है, लालच पक्षपात है। परमेश्वर तो ऐसा कभी नहीं चाहता था। वो तो चाहता था कि हम सब बराबर से भाईचारे में रहें। इस कारण आज संसार के कष्टों के लिए परमेश्वर को दोष देना उचित नहीं है। अपराधों के लिए, रोगों के लिए, विकृत बच्चों के लिए, समस्त दुराचारों के लिए परमेश्वर को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की पृथ्वी नहीं रही। यीशु मसीह ने दो बार शैतान को इस पृथ्वी का हाकिम कहा है। अब समस्या तो ये है कि मनुष्य पृथ्वी को छुड़ाने में सक्षम नहीं है। उसने पृथ्वी का कब्जा शैतान को दे तो दिया, परंतु अब उसे छुड़ाने के लिए उसके पास कोई मार्ग ही नहीं रह गया है। वो आत्मिक रूप से खाली हो चुका है, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस काम के लिए? संसार को मुक्त कराकर परमेश्वर के अधीन फिर से कर देने के लिए। यही कारण था कि यीशु को मनुष्य बनना पड़ा कि वो मनुष्य की कुटुंबी हो जाए। अब वो हमारा कुटुंबी मुक्तिदाता है। लूका अध्याय 4:5-7। तब शैतान उसे ले गया और उस पल भर में जगत में सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को देता हूं। शैतान उसे पृथ्वी के राज्य की प्रतिज्ञा दे रहा था, परंतु यीशु ने उससे नहीं पूछा, तेरे कहने का अर्थ क्या है? यीशु जानता था कि शैतान को ये अधिकार प्राप्त है। पृथ्वी का अधिकारी होने का उसका घमंड सही था। वो जिसे चाहता है उसे देता है। ये संसार शैतान का है। यद्यपि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर संसार को, अर्थात हमें, अपने लहू की कीमत द्वारा मुक्त कर दिया है, संसार अब भी शैतान के नियंत्रण में है। संसार अभी भी शैतान की अधीनता मानता है और उसके शासन को स्वीकार करता है। संपूर्ण सृष्टि अब तक कहराती है और पीड़ित होती है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करती है। मुक्ति के इस दिन को मन में संजोए हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यूहन्ना स्वर्ग में जाता है और वहां वो परमेश्वर के सिंहासन को देखता है। वो प्राचीनों को भी उनके छोटे सिंहासन पर बैठा देखता है जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है। वो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखता है। वो वहां पुरुषों को देखता है और सुनता है कि वे परमेश्वर की स्तुति में कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:8। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। वो 24 प्राचीनों को देखता है कि वे मुंह के बल गिरकर अपने सोने के मुकुट परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख देते हैं और कहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिर्जी गई। अध्याय 5 में वो उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा है एक पुस्तक देखता है जिस पर 7 मोहरें लगी है और उसके भीतर और बाहर दोनों ओर लिखा हुआ है। यहां यरमिया के पास यही पुस्तक है जिसमें से एक पर उसने मोहर लगा दी है और दूसरी को खुला रखा है। ये जायदाद के दस्तावेज हैं। सिंहासन पर बैठने वाले के हाथ में जो पुस्तक है उस पर 7 मोहरें लगी है और एक स्वर्गदूत पुकार कर कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:2। इस पुस्तक को लेकर इन मोहरों को खोलने के योग्य कौन है? दूसरे शब्दों में कोई है जो पृथ्वी को मुक्त करा दे कि वो फिर से परमेश्वर की हो जाए? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:3-4। ना तो स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। यूहन्ना परेशान क्यों है? वो क्यों रोता है? क्योंकि यदि पृथ्वी को इस समय मुक्त नहीं कराया गया तो वो सदा के लिए शैतान की हो जाएगी। ये विचार यूहन्ना के लिए असहनीय था। तब उन प्राचीनों ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यूहन्ना कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:6-10। मैंने मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वहां करोड़ों स्वर्गदूत और करोड़ अन्य संत थे जिन्होंने एक आवाज में कहा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5:12, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इस महिमा के दिन इस संसार के समस्त राज्य फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के हो जाएंगे और पृथ्वी का पुनरुद्धार होगा तथा हम इसे उस रूप में देखेंगे जिस रूप में परमेश्वर ने उसे सृजा था और मनुष्य को इस पर रखा था। तब हम शांति, प्रेम, एकता और धार्मिकता में यहां रहेंगे। तब समस्त व्यापार मंडल समाप्त हो जाएगा और मनुष्य उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य रहे। प्रत्येक मनुष्य अपनी दाख के और अंजीर के नीचे बैठेगा और मैं अपने नारियल के पेड़ के नीचे। यरमिया का ये भाग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें परमेश्वर के विधान की समझ प्रदान करता है। मैं यहाँ एक और रोचक विषय पाता हूँ जो सामान्यतः यहूदी व्यवस्था से संबंधित है। यीशु उस पुस्तक को लेकर मोहरे खोलना आरंभ करता है और दंड बरसता है, तब वो अध्याय 10 में प्रवेश करता है। पुस्तक खुली हुई है और वो अपना एक पांव समुद्र पर पदार्पण करता है तथा दूसरा पांव पृथ्वी पर। तब वो कहता है, इस पृथ्वी का राज्य अब हमारे मसीह यीशु का राज्य हो गया है। वो अपने लहू से खरीदी हुई पृथ्वी पर अपना दावा करता है। मेरी रुचि का विषय यह है कि 6 वर्ष की सेवा के पश्चात 7वां वर्ष मुक्ति का वर्ष होता है। आदम 6000 वर्ष पहले शैतान के दासत्व में गया था। हम 7वें 1000 वर्ष के बहुत ही निकट आते जा रहे हैं। मुक्ति का समय निकट है। हम ये नहीं जानते कि आदम कब शैतान के अधीन हुआ था, परंतु बिशप अशर के अनुसार लगभग 4004 ईसा पूर्व में। यदि ये सही है तो 7वां 1000 1996 से आरंभ हो गया है। हम तिथि निर्धारक तो नहीं बनना चाहते हैं, परंतु ये तो निश्चित है कि 7वां 1000 वर्ष आरंभ हो चुका है। समयों और ऋतुओं का ज्ञान हमें नहीं है। हमने 6000 वर्षों में जितना हो सकता उतना अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया है। अब प्रभु हस्तक्षेप करेगा, वो अपने राज्य की स्थापना करेगा, उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यरमिया का ये अध्याय आकर्षक है कि हम मुक्ति के ईश्वरीय नियमों और कुटुंबी मुक्तिदाता के विचार को समझें। जब शालूम अपनी भूमि को मुक्ति न करा पाया, तब यरमिया उसकी कुटुंबी मुक्तिदाता बनकर आया, उसके लिए उसकी भूमि को मुक्त कराया। मनुष्य स्वयं को मुक्त नहीं करा सकता है, यीशु ने आकर हमें मुक्त कराया। यीशु ने संसार को मुक्त कराया और हमें भी, क्योंकि हम उसकी संतान है। यरमिया अध्याय 32:16। जब मैंने मोल लेने की वो दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारू के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की। यरमिया इसके बारे में परेशान था, इसलिए वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरे लिए इसे खरीदना मूर्खता है, मुझे ऐसा क्यों करना है। यरमिया अध्याय 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे विचार में बाइबल में जो प्रार्थनाएं हैं उन पर मनन करना मूल्यवान है। यरमिया की ये प्रार्थना अध्ययन में अत्यधिक अर्थपूर्ण है। ध्यान दीजिए कि वो इस प्रार्थना का आरंभ कैसा करता है। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये प्रार्थना आरंभ करने का कैसे भव्य तरीका है। मती अध्याय 6:9, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। शिष्यों ने इसे अपनी प्रार्थनाओं में बहुत उपयोग किया था। प्रेरितों के काम अध्याय 4:24, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। प्रार्थना में आप जिससे बात कर रहे हैं उसे संबोधित करना उचित ही होता है, क्योंकि इससे आपको ध्यान रहता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। प्रभु, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपनी प्रार्थना में आप सदैव इसे स्मरण रखें। यरमिया अध्याय 32:18-24 तक, तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हरेक को उसका चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इसराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने ये देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वे आकर इसके अधिकारी हुए तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और ना तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस कारण तू उन पर ये सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं, और ये नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तूने कहा था वो अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। प्रभु, तूने कहा कि युद्ध होगा, महामारी आएगी, सूखा पड़ेगा, और हम इसे देखते भी हैं। प्रभु, यरमिया अध्याय 32:25, तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले। तू बहुत बुद्धिमान है, तूने ये सब कर दिखाया है, परंतु प्रभु, उस खेत को खरीदना तो मूर्खता है, क्योंकि वो तो बाबुल के अधिकार में है। और प्रभु परमेश्वर, तूने मुझसे कहा उस खेत की कीमत मुद्रा में चुकाकर खरीद ले। यरमिया अध्याय 32:25 में आगे लिखा है, यद्यपि कि ये नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है, ये उनका है, अतः मैं इसे क्यों खरीदूं, क्योंकि ये तो व्यर्थ ही का सौदा होगा। ये देखने को मिलता है कि वो बहुत देर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से शिकायत करता है। वो एकदम ही शिकायत करने नहीं बैठ जाता, वो परमेश्वर की महानता और सामर्थ की चर्चा करता है, तब वो अपने विषय पर आता है। परमेश्वर, तूने ये सब किया है और अब तू कहता है कि मैं उस खेत को खरीद लूं, जबकि कसदियों ने उस पर अधिकार कर लिया है। परमेश्वर उसे उत्तर में कहता है, यरमिया अध्याय 32:26, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यरमिया की बात पकड़कर कहता है, यरमिया अध्याय 32 पद 27, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यरमिया कहता है, हे यहोवा, तू परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर उसे यही कहता है, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यरमिया अध्याय 32 पद 28 और 29, सो यहोवा यू कहता है, देख, मैं ये नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं, और वो इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। वहां जितने भी घर हैं, उनकी छत समतल है, और उन लोगों के आंगन छत पर होते हैं। वहां आप देखेंगे कि महिलाएं अपने अपने घरों की छतों को घिस घिस कर साफ करती हैं। वे आज भी ऐसा ही करती हैं, क्योंकि वो घर का एक भाग होता है। इस कारण वे लोग अपनी अपनी छतों पर ही देवी देवताओं की पूजा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे तथा अर्ध अर्पित करते थे। यहोवा ने कहा, मैं उन्हें जला दूंगा। यरमिया अध्याय 32 पद 30 से लेकर 35 तक, क्योंकि इसराइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लड़कपन से करते आए हैं। इसराइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं। यहोवा की ये वाणी है, ये नगर जब से बसा है, तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने के कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इसराइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यत वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सबके सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। वरन जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिनोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलेक के लिए होम किया। वे मोलेक को प्रसन्न करने के लिए अपने बच्चों को जलाकर बलिदान करते थे। यरमिया अध्याय 32 पद 35 से लेकर 37 तक, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना ये बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किए जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे, परंतु अब इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिए तुम लोग कहते हो कि वो तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें बरबस निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। परमेश्वर कहता है, ये तो होगा ही, परंतु भविष्य में, देखो, मैं उन्हें सब राष्ट्रों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने उन्हें अपने क्रोध में, अपनी जल जलाहट में, अपने प्रकोप में आकर खदेड़ दिया है। मैं उन्हें लौटाकर यहां लाऊंगा और उन्हें सुरक्षित रखूंगा। यरमिया अध्याय 32 पद 38 से लेकर 44 तक, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरे भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय में उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूं कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर ये सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वो सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। सो ये देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि ये उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गए हैं और ना पशु, ये तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मोहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है, यरमिया तू चिंता मत कर, वे अवश्य लौटेंगे और ये देश उन्हीं का होगा, उन्हें लौटा लाने की प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा।